ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करने के साथ साथ वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इसमें मंत्री स्तरीय सत्र, व्यवसाय से सरकार सत्र, बैठकें, स्टार्टअप और नीति की प्रदर्शनी तथा निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालयों द्वारा की गई संबंधित पहल शामिल है। निवेश प्रोत्साहन के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित क्षेत्र, कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाएं, बुनियादी ढांचा और रसद, ऊर्जा तथा मनोरंजन और खेल शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सम्मेलन के साथ ही पहले से चल रहे रोड शो, गोलमेज बैठकें भी सम्पन्न हो जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य लोगों पर किरू पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने किरू पनबिजली परियोजना के निर्माण में 2200 करोड़ रुपए के ठेके में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। पिछले वर्ष सीबीआई ने संबंध में दिल्ली और जम्मू में 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। रिजर्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना व्यक्त की है। रिजर्व बैंक के ताजा बुलेटिन के अनुसार औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, वित्तीय बाजार में सुधार और रबी की अच्छी फसल तथा अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के कारण कृषि की स्थिति आशाजनक रहने का भी अनुमान है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर चर्चा की गई। दिव्यांगजनों को अब केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% का आरक्षण मिलेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अमेरिका और ईरान के बीच आज इटली की राजधानी रोम में 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। इनमें से 3 वार्ताएं ओमान की राजधानी मस्कट में और 1 रोम में हुई है। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध और अमरीकी प्रतिबंध हटाने के लिए हो रही है। ये वार्ता ओमान द्वारा कराई जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है। अमेरिका के होमलैंड विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अन्य देशों के छात्रों का नामांकन एक विशेष सुविधा है, न कि अधिकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हाल के घटनाक्रम को देखते हुए पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार डेली स्टार के अनुसार श्री यूनुस ने कल सलाहकार परिषद की बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की। अखबार के मुताबिक श्री यूनुस अपनी सरकार के प्रदर्शन से नाखुश हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इन अटकलों को देखते हुए जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़े नेता श्री यूनुस से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इनमें सूचना सलाहकार महफूज आलम, स्थानीय सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद शौजिफ भैया और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम शामिल थे। नाहिद के अनुसार श्री यूनुस वर्तमान परिस्थितियों में काम करना जारी रख सकने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में है। भारत ने डियोगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह को फिर से मॉरिशस के पूर्ण नियंत्रण में सौंपे जाने का स्वागत किया है। इस संबंध में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में सहमति बनी थी। भारत चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का लगातार समर्थन करता रहा है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के साथ 23 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के फुटबॉल मैच के लिए राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी गई है। ये मुकाबला 21 जून को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।